ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தார்க்கிக லோகத்தை பரமாணு ஜெகத் பண்ணி ஜாயா. ஈஸ்வர் அலக ஹே, நிமித்த காரண உபாதன காரண பரமாணு. ஐசை உற்பத்தி நிமித்த காரண அலக, உபாதன காரண அலக. லோகமே திக்தா குலால கட பனாதா ஹே, குலால் ஹோதா நிமித்த காரண, மிட்டி ஹே உபாதான காரண. அரே வேதாந்தமே கே ஹே, வீ ஏக் ஹி ப்ரஹ்ம அத்வித்ய, யோ நிமித்த காரண பி உபாதான காரண பி. ஜோ ப்ரஹ்ம நிர்குண நிஷ்க்ரிய ஹே, வோ கேசே ஜகத் கா காரண ஹோகா. நிஷ்க்ரிய அத்வித்ய ப்ரஹ்ம, கோய் குண நஹீ, உசே நிர்குண நிஷ்க்ரிய ப்ரஹ்ம சே இத்தனே படே ஜகத் கேசே உத்பன்ன ஹுவா. ஃபிர் கஹதே மாயா சே, மாயா ஃபிர் கஹான் சே ஆயி. அத்வித்ய ப்ரஹ்ம ஹே தோ மாயா க்யா சீஜ் ஹே. इसके ऊपर ऐसे विचार करने पर शास्त्र में संशय हो जाते हैं, और संशय स्वाभाविक है. अलग अलग मत भी चल रहा है, कोई किसको कहता है बड़े, कोई किसको कहता है. तो शास्त्र का तात्पर्य किसमें है? वास्तव ब्रह्म अद्वितीय, सबसे श्रेष्ठ अद्वितीय ब्रह्म कोई निर्गुण निष्क्रिय अद्वितीय ब्रह्म है अथवा नहीं, ये संशय हो जाता है. उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश कार्तिक कितने देवता, इंद्र वरुण आदि, हनुमान आदि कितने सब है. विष्णु भी राम कृष्ण आदि अवतार अलग अलग, सब में से श्रेष्ठ कौन परमात्मा है? ये साधक भी इसमें भी पहले द्वंद्व में बड़े संग्राम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या करना है. एक देवता देखते दूसरे देवता बड़ा, शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई किसी पुराण पढ़ो उनको सबसे बड़ा कह देते हैं. अगर भागवत पढ़ो तो कृष्ण बड़ा हो जाए, शिव पुराण पढ़ो शिव बड़ा है, सूर्य पुराण एक होता आदित्य पुराण, वहां सूर्य भगवान सबसे बड़ा है. गौरव पुराण पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो तो देवी सबसे बड़ी, देवी विष्णु को उपदेश करती है. देवी भागवत में देवी उपदेश करती है विष्णु को. तो इसमें कौन बड़ा है? सबसे बड़े की उपासना करना सब चाहते हैं. और द्वैत पारमार्थिक है या अद्वैत, द्वैतवादी बहुत ही, जितने सब साक्षी है दर्शन में, एक उत्तर मीमांसा का छोड़ करके पूर्व मीमांसा जैमिनी महर्षि का, उसके पहले योग दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पांच दर्शन तो द्वैतवाद ही है. एक उत्तर मीमांसा है वेदांत, उत्तर मीमांसा वेदांत में भी एक शांकर मत को छोड़ करके बाकी जितने मत है, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, केवल अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत. अद्वैत शब्द शास्त्र में आए तो अद्वैत को तो रखते ही, अद्वैत साथ कुछ जोड़ देते हैं. द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत. विशिष्टाद्वैत तो क्या कहेंगे? अद्वितीय ब्रह्म तो परमात्मा एक है किंतु वो विशिष्ट है, जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक है. ब्रह्म का अवयव जड़ भी उसका अवयव, चेतन भी उसका अवयव. जड़ चेतन अवयव वाला ब्रह्म एक, जैसे एक लड्डू बना दिया, उसे बूंदी भी रख दिया, कुछ अन्य पदार्थ मिला दिया, लड्डू एक हो गया, उसके अवयव अलग अलग हुआ. इसी प्रकार सारे पदार्थ मिल करेंगे एक ब्रह्म, सावयव मानते हैं. अब तार्किक लोग कहते हैं सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा. जो सावयव अवयव वाला है अनित्यम सावयवत्वाद घटवत, वो कहते सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा. इसमें अलग अलग मत होने के कारण और आचार्यों के द्वारा प्रणीत दर्शन, कोई सामान्य व्यक्ति कोई कुछ कहता है, कथा प्रवचन करने वाले कुछ बोल दिया, उसको हम माने नहीं माने अलग बात है, किन्तु ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत, कपिल सांख्य है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, और कणाद है वैशेषिक मत है, गौतम के न्याय है. कणाद से महर्षि तो खेत में सब शस्य अनाज काट कर ले गए, धान गेहूं काट कर ले गए, उसमें कोई धान गेहूं को गिरा होगा मुगा, उसको चुन चुन कर ला करके उसको रखकर उसको खाकर रहना, ये कितने महर्षि है. तो ये सब महर्षियों का मत है. सांख्य कपिल के सांख्य ज्ञानी कपिल ज्ञाना बतारा, पतंजलि महर्षि ये योग मत है. इनके मत में इतने अलग अलग भेद है तो किसको मानेंगे? स्वाभाविक संशय होता है, सब द्वैतवाद है. और एक अद्वैतवाद है तो उसमें बहुत मतभेद है, अलग अलग मतभेद है. ये जो संशय होता है उसको कहते प्रमाण संशय. शास्त्र तो प्रमाण है किन्तु उसको देखते हैं तो विभिन्न प्रकार लगता है, कहीं कुछ लगता है. ये उपनिषद ब्रह्म विद्या है, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या. अभी उपनिषद है चल रही किन्तु अभी तक सब उपासना चल रही, कहीं ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म नहीं, अभी आया सर्व ब्रह्म अस्मिति उपासित. नहीं तो अद्वितीय ब्रह्म तो मैं ही ब्रह्म, किन्तु इतने से उपासना चल रही। अब ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए साधक आया गुरु के पास, उसको उपासना करने के लगा देते हैं। यदि ब्रह्म अद्वितीय सत्य है, सीधा ही बता दो तुम ब्रह्म हो, इतने उपासना क्यों कराते है? ये सब प्रमाण में संशय होता है। अब प्रमाण संशय की निवृत्ति होती शास्त्र के श्रवण करने पर आचार्य के मुख से। आचार्य मुख से वेदांत उपनिषद श्रवण करे, प्रारंभ से अंत तक पढ़े, विचार करे। विचार करने के लिए कुछ लिंग ज्ञापक है, किस में तात्पर्य है ये समझना। उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के लिए ज्ञापक है, किससे आरंभ किया गया, अंत में किस में उपसंहार किया गया। उपक्रम उपसंहार एक हो, उपक्रम उपसंहार अभ्यास जिसको बार बार, जैसे षष्ठ अध्याय में आएगा तत्वमसी को बार बार नौ बार कहा गया, ये अभ्यास कहते बार बार कहना। अपूर्वता नहीं ना देवम अपनवन, देवता लोग प्राप्त नहीं करते, इंद्र का विषय नहीं है। अपूर्वता फल भी कहेंगे, अर्थवाद स्तुति है, उपपत्ति युक्ति बताएंगे, ये सब मिल करके तात्पर्य निर्णय होता है। शास्त्र के तात्पर्य निर्णय करना ऐसे भाष्य आदि के आचार्य के भाष्य आचार्य मुख से श्रवण नहीं करेंगे तो निर्णय करना बड़ा कठिन होते हैं। इसीलिए बादरायणी ने, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा दर्शन बनाया। उपनिषद के प्राण से उत्पत्ति, आकाश से उत्पत्ति, ब्रह्म से उत्पत्ति, तो जगत से जगत की उत्पत्ति किससे मानेंगे? तो इसमें आया आकाश से उत्पत्ति जहां कही गई वो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, प्राण से उत्पत्ति जहां कही गई वहां भी प्राण का अर्थ ब्रह्म बताया था, आकाश स्थलिंगात ब्रह्म सूत्र है। अतएव प्राण, अतएव का ऐसे ब्रह्म का लिंग ज्ञापक कौन से, प्राण भी ब्रह्म है। प्राण शब्द कह दिया, आकाश शब्द कह दिया, तो भी ब्रह्म अर्थ लेना। ऐसे उसके संशय निवृत्ति के लिए ब्रह्म सूत्र में विचार आया, जिससे शास्त्र का तात्पर्य क्या है ये निश्चय हो जाता है। वही श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करने से वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मनिव तात्पर्यम इति भी श्रवणम भवेत। श्रवण क्या है? वेदांत श्रवण, श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ कथा सुनते हैं, खुश होते हैं, नाम गान करते, कीर्तन करते, ये श्रवण नहीं। वो श्रवण अलग है, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधितव्य, जो श्रवण को ज्ञान का साधन कहा गया वो श्रवण क्या है? लोक में कोई गाली गुलज करता तो भी श्रवण तो होता है, सुनना ही तो श्रवण, श्रवण का तो सुनना। और श्रवण इंद्र कहते जिसे सुना जाता है, सुनना। कोई कुछ कहता तो सुनते, मेघ गर्जन होता है तो सुनते, समुद्र गर्जन भी हम सुनते, ये श्रवण को नहीं कहते ज्ञान का साधन, वेदांत श्रवण। अरे वेदांत श्रवण का अर्थ है वेदांत कोई बोलता है उसको सुन लिया, मंत्र कोई पढ़ता सुन लिया, ये श्रवण में नहीं होता है। श्रवण करा अर्थ नहीं समझ जाता, श्रवण क्या हुआ? अर्थ बताया, कुछ को बताया, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं क्या प्राण से सबकी उत्पत्ति, कहीं कहते आकाश से उत्पत्ति, कहीं कहते अद्वितीय ब्रह्म था, कहीं कहते कुछ नहीं था पर असत था, कहीं कहते सत था, ये सब कहने से ये श्रवण भी क्या हुआ? कहीं कुछ कहते, कहीं कुछ कहते, सुन तो लिया। एक स्थान में कहते पहले कुछ भी नहीं था, तुच्छ असत था। एक स्थान में कहले अद्वितीय ब्रह्म था। एक स्थान में कहे आकाश से जगत की उत्पत्ति हुई, कहीं कहते प्राण से उत्पत्ति हुई, ये सब श्रवण हुआ। क्या निर्णय करना, तो क्या कहना चाहते हैं? इसे श्रवण का अर्थ नहीं खाली सुनना, ये श्रवण करते करते तात्पर्य निर्धारण करना, निश्चय करना। क्या तात्पर्य है? वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानत, संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य आदि में, मध्य में और अवसान अंत में। तात्पर्य किसमें? ब्रह्मात्मनेव तात्पर्य, ब्रह्मात्मा में जीव ब्रह्म की एकता में ही तात्पर्य है वेदांतों का। इति धी श्रवणम भवेत, इस निश्चय को श्रवण कहते। श्रवण करते करते ऐसा निश्चय हो गया सारे वेदांत उपनिषद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, ये दृढ़ निश्चय हो गया तो श्रवण हो गया। जब तक ये शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से भिन्न मिथ्या सब है, ऐसा निश्चय नहीं हुआ तब तक श्रवण नहीं हुआ। ये श्रवण करके निर्णय करना, खाली सुन लिया कुछ कहते, अपने भजन कर लिया, बोल दिया क्या कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ सुन लिया, नहीं सुन के तात्पर्य निर्णय हो निश्चय निर्णय का अर्थ नहीं, वो कहते अद्वितीय ब्रह्म, हम अद्वितीय ब्रह्म नहीं, अपने आप निर्णय करना पड़ता है। इसे देख करके आगे पीछे विचार करके आचार्य के चरण में बैठ करके श्रवण करके फिर प्रश्न उत्तर करके शंका समाधान करके पूरा निर्णय हो जाए अद्वितीय ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मसूत्र का श्रवण भी आवश्यक है, जहां जहां परस्पर विरोध दिखता है उसका समाधान करते हैं। ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय में आगम प्रकरण हो गया, द्वितीय अध्याय में अविरोध, अद्वितीय ब्रह्म कहेंगे। सब दर्शन का विरोध होता है, सब दर्शन ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत है, सांख्य योग और न्याय वैशेषिक ये सब मत का विरोध होता है। फिर ये विरोध होगा तो इसको हम कैसे ठीक मानेंगे, इसी विरोध का समाधान करेंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र में अविरोध अध्याय में सारे दर्शन का विरोध कैसे नहीं और अन्य अन्य मत कैसे उसमें क्या दोष है ये स्पष्ट करेंगे, तब ये प्रमाण में निश्चय बुद्धि होती है। अच्छा निश्चय हो गया शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, ये हो गया श्रवण। श्रवण करने के बाद मनन करने की क्या आवश्यकता है, एक प्रमाण संशय के बाद दूसरा संशय है प्रमेय संशय। प्रमेय इसका ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्मात्मनि तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता। ब्रह्म कैसा है, अद्वितीय, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म अद्वितीय। उसी ब्रह्म के साथ जीव की एकता में हुई अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म। आप अद्वितीय ब्रह्म है अर्थात आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, आपका कोई अवयव नहीं, आपसे विजातीय भी कोई नहीं, सजातीय भी कोई नहीं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म। ये कैसे संभव हो सकता है, पहले तो हमारे सब हाथ पैर अवयव है और निरवयव कैसे हम होंगे, हम परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न ब्रह्म हम कैसे है, और हमसे भिन्न कैसे नहीं, चलो हम ब्रह्म है कोई बात नहीं, मेरे से भिन्न इतने को बैठे वो क्या फिर है? आप ब्रह्म है कोई सच मैं ब्रह्म, बाकी सब जो बैठे हो वो क्या है, बाकी सब क्या जड़े है क्या, बाकी ये चेतन है तो अद्वितीय कैसे हुआ। ब्रह्म कौन सा ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय का था उससे भिन्न कुछ नहीं, बहुत मानकर सोचकर चलो हम ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म है सब ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म कितने हो जाएंगे, अनंत जीव बैठे सब ब्रह्म कहेंगे अनंत ब्रह्म होगे, ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा। अद्वितीय होने के लिए ये बड़ा कठिन है, एक ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं चेतन तो बिना नहीं, जड़ भी बिना नहीं, ये सारे जो प्रपंच दिखता है ब्रह्म तो किसी ने नहीं देखा है वो सत्य है पानवाती का, ये सब जो दिखता है मिथ्या है। इतने बड़े प्रपंच जिसमें सारे व्यवहार करोड़ करोड़ रूपया खर्च करे, कितने कितने बड़े बड़े मकान और इतने पहाड़ पर्वत देखें तो उसको सोचने पर ना बुद्धि काम नहीं करती, ये कैसे किसने बनाया इतने बड़े बड़े पहाड़, शुद्ध निर्गुण ब्रह्म है ये बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए, कहां से सामग्री लाई, और आगे देखो केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ वहां एक बड़े बड़े पर्वत लगता है एक ही पत्थर है, कोई बीच में जॉइंट भी नहीं, ये मकान में तो सब सीमेंट ईट पत्थर दे करके बनाते हैं, वहां देखो पर्वत नीचे से ऊपर एक ही पत्थर जैसे लगता है, कहीं फटावा जैसे लग गया कि एक ही पत्थर, एक ही पत्थर ये कहां से लाए और कैसे बनाए, किसने बनाए, कैसे बनेगा, वहां कोई बुद्धि काम नहीं, वैज्ञानिक लोग विचार कर उसको निर्णय कर पड़ेगा कैसे बन जाएगा, कैसे विचार करेंगे इतने बड़े कहां, ये क्रेन आदि कहां काम करेगा, तो वो पत्थर का थोड़ा टुकड़ा गिर जाएगा तो कितने सब को कहां खत्म कर देता है, तो ये सब मिथ्या है, ये कैसे निश्चय होगा, इसके लिए मनन की आवश्यकता। मनन युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम मनन अभेद, युक्ति से ये जो संभव है मिथ्या संभव है अभी निर्णय नहीं हुआ, ये हो सकता है मिथ्या, स्वप्न दृष्टांत को देख करके सपने भी इसे पर्वत समुद्र मकान सब देखने पर भी मिथ्या है, जगने के बाद नहीं रहता है, इसी प्रकार ये भी संभव है, बार बार विचार करना पड़ता है, बहुत तर्क पंचदशी आदि ग्रंथ में तर्क सब बताए प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से चिंतन करने से मिथ्या तो निश्चय होगा, वो प्रक्रिया को नहीं समझ करके कोई अष्टावक्र गीता और योगवासिष्ठ आदि कुछ कुछ श्रवण करने पर सब अद्वितीय ब्रह्म कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बात सुनने पर बहुत अच्छा लगा, फिर हमको करना क्या पड़ेगा, ब्रह्म अद्वितीय और कुछ नहीं, किंतु हम तो हमको जो दुख मिलता है दुख तो मिलता है, फिर हमको क्या करना, हमको क्या मिला, अष्टावक्र गीता में बिल्कुल बड़े सुंदर लगता है कुछ है ही नहीं, अयम वही तो बंध समाधि मनुतिष्ठसी, जनक को कहते तुम्हारा तो यही बंधन तो समाधि कर रहे हो ध्यान कर रहे हो योगाभ्यास कर ही तुम्हारा बंधन है, किसी स्थिति को जाने पर उसको कहते तुम्हारे ही बंधन जो तुम समाधि अनुष्ठान कर रहे हो। ज्ञान होकर के बहुत पहुंच गए, तुम ही ब्रह्म हो, तो समाधि करके किसका दर्शन क्या करना प्राप्त करना चाहते हो, किस अवस्था में कहते है। और शुरू से कोई बता देते हैं, ऐसे भी सुना कोई शुरू से कहेंगे तुम्हारा तो यही बंधन जो मंत्र जब करते हो ना, ये तुम्हारा बंधन का कारण। जो मंदिर में जाते हो प्रणाम करते द्वैत चिंतन करते, यही तुम्हारा बंधन का कारण। और क्या करना, अद्वैत तुम ब्रह्म है, बस मस्त हो जाओ। मस्त कर क्या करेंगे, सुन लिया सब ब्रह्म, कुछ नहीं नानाथी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो, बड़े बड़ा अच्छा है। फिर और करना क्या है, दुख तो जैसे कोई से रहा, इसलिए प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ता है। प्रक्रिया से नहीं जाकर के जो मूल ऊपर दर्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि इसे पुस्तक लिखते हैं पूरा वेदांत के अंतिम दर्शन को, और उसके ऊपर भाषण भी करते हैं। ऐसे लोगों का नाम प्रसिद्ध है, कोई इन सब कहते हैं कि सुपुरता क्या मूर्ति, कोई पुस्तक पढ़ती क्या मूर्ति, यज्ञ मूर्ति, हाँ, जैसे रजनी चेक था जो बोलता था वेदांत का अंतिम स्थिति, वो सब बोलने पर बड़ा अच्छा लगेगा, किन्तु आपको कहाँ ऐसे पहुंचना, आपको क्या करना, ये जानने के लिए शास्त्र में से एक सीढ़ी सोपान बनेगी, और सोपान छोड़ करके ऊपर सीधा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किन्तु हम क्या करेंगे, हम तो जहां नीचे गिरे हुए कैसे जाएंगे, इसलिए सीढ़ी में जाना पड़ता है। मनन करके पहले संभव हो सकता है ये विचार करना है, युक्ति उसके लिए आवश्यक है, बहुत युक्ति प्रक्रिया शास्त्र में है। घटाकाश मटाकाश जलाकाश मेघाकाश, ये प्रक्रिया समझे, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का भेद समझे, लक्ष्यार्थ क्या वाच्यार्थ क्या दोनों भेद नहीं समझ करके मैं ब्रह्म रटता रहे, कुछ नहीं होगा, कितने करोड़ कल्प चल जाए कुछ नहीं होगा। इसलिए वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भेद समझने के लिए प्रक्रिया है। जीव का क्या स्वरूप है, बुद्धि क्या है, मैं कौन हूं, ये सब विभिन्न प्रकार संशय निवृत्ति होने के लिए मनन, मनन से जो संभावना हो सके कि जीव ब्रह्म एक संभव है, तभी तो अहम ब्रह्म चिंतन हो सकता है। जब असंभव है कैसे हो सकता है, कोई कहे तुम चिंतन करो मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, चिंतन करो, वह चिंतन बोलेगा मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, किंतु इधर सोचे हंसता रहेगा मैं क्या हाथी हूं। फिर कहे नहीं चिंतन करो तुम राष्ट्रपति हो, अब वो भी अच्छा है हाथी के पीछे मैं राष्ट्रपति हूं, और खुशी मैं राष्ट्रपति हूँ, भी सोचते सोचते फिर सोचेगा अपने आप को मूर्ख कहेगा मैं कहाँ राष्ट्रपति हूँ। जितने चिंतन से क्या होता है, इसी प्रकार कहते मैं ब्रह्म हूँ, कोई को रटते मैं ब्रह्म हूँ, और कोई कोई मंत्र दे देते हैं। एक बहुत 70-75 साल की उम्र की बूढ़ी, उनको गुरु मंत्र दे दिया सोहम, सोहम था वही ब्रह्म मैं हूँ, वो रटती है, वो क्या है, ये भगवान का नाम है, जप करती है, इसे माला में जप करते भगवान का नाम जप करते, वो सोच लिया ये सोहम भी भगवान का नाम है, गुरु मंत्र दिया है, उसका अर्थ क्या पता नहीं, सोहम मतलब भगवान का नाम है, सोहम क्या स अहम, वह मैं हूं, वह परमात्मा मैं हूं, सोहम का अर्थ। किंतु ये मंत्र देते जो कुछ नहीं समझते उसको बताते मंत्र जप करो सोहम नहीं तो शिवम, ये जप करने से क्या होगा, इसका अर्थ भी कुछ पता नहीं, खाली जप करने से क्या होगा। इसलिए मनन संभव हो आगे निधिध्यासन होगा, शुरू से सिद्धांत खाली तुम ब्रह्म इतने कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए श्रवण करके निश्चय करना है, तात्पर्य निर्णय करना, फिर मनन होगा तब निधिध्यासन होगा। ये वेदांत विचार तो उत्कृष्ट है, किंतु ये श्रवण मनन निधिध्यासन जो नहीं कर पाते हैं, उनको यदि अहंग उपासना करने के लिए कोई उपदेश दिया, और यदि अहंग उपासना कर सके, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, सर्वात्मक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, उसे बिना कुछ नहीं, ये भी बहुत पूर्व पुण्य से यदि किसको गुरु वाक्य में विश्वास हो जाए कि अनुभूते रभावेपि ब्रह्मास्मि इत्येव चिन्त्यताम्, अनुभव नहीं होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे जो चिंतन करे तो कोई दोष नहीं है। अनुभव नहीं हुआ किन्तु ऐसे चिंतन यदि करे तो दोष नहीं, किन्तु उसे लाभ होता है, ये अहंग्रह उपासना। तो भी बिल्कुल नहीं समझ का नहीं होता, थोड़ा समझना होता है, शास्त्र श्रवण किया ऐसे परिपूर्ण अहंग्रह उपासना करने के लिए ये सब प्रक्रिया बताते हैं। छोटे छोटे से इस उपासना, अलग दृष्टि से उपासना करो, साम के अवय में लोक दृष्टि करो, वेद दृष्टि करो, आदित्यादि दृष्टि करो, पंचविध आया लोक, इस लोक परलोक दृष्टि करो, ब्रह्मांड दृष्टि करो, ये सर्वात्म के सामने ये आदित्य है, ब्रह्मांड है, सर्वात्मक वो सम है, साधु है, ऐसे करते करते वो सर्वात्मक है, वो सर्वात्मक साम मैं हूं, ऐसे मैं ही सर्वात्मक हूं, ऐसे करने के लिए अहंग उपासना करने के लिए ये प्रक्रिया है। ऐसे जो करेगा उपासना, ऐसे करते करते वो अहंग उपासना भी कर सकता है। ये थोड़े कुछ ऐसे दृष्टि करके उपासना नहीं करे, प्रतीक उपासना भी जिसने नहीं की उसको अहंग उपासना कैसे कर सकता है। इसलिए प्रतीक उपासना भी आवश्यक है। ये उपासना कितने जन्म में भक्ति उपासना करने पर थोड़ा अंतगुण शुद्ध होता है तो आगे इसे सर्वात्मक वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं, सबको मालूम है, रटे सब जानते हैं, किंतु सर्वत्र वासुदेव बुद्धि हो जाए, यदि सब परमात्मा से बुद्धि हो जाए तो भक्ति दृढ़ होगी। एक शब्द से कहना तो सरल है, सब परमात्मा से बुद्धि हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहीं द्वेष होता है, कहीं थोड़ा सा भी द्वेष कभी आ गया, इसका अर्थ उसमें परमात्मा बुद्धि है नहीं। तो है इसे कहना बड़े बड़े कठिन है, ये परमात्मा बुद्धि इसे सर्वात्मक ब्रह्म ज्ञान बुद्धि दृढ़ निश्चय होने के लिए प्रतीक उपासना से प्रारंभ करते हैं। एक कहीं भी योग सूत्र में देश बंध चित्त से धारणा, किसी देश में मन को लगाओ, पहले थोड़े मन लगाओ, धारणा करो, आगे ध्यान होगा। धारणा एक स्थान में मन लगाने के सामर्थ्य नहीं है, मैं ब्रह्म कौन चिंतन करेगा। थोड़े एक स्थान में लगाओ, उसे ताटक भी करते हैं, कहीं भी मन लगाओ एक स्थान में, उसके बाद बाहर लगाओ, फिर अंदर लगाओ, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, फिर लगातार चिंतन करो, ध्यान होगा। ये सब करने पर अंतकोण शुद्ध होता है, तब आगे अहंग उपासना भी कोई कर सकता है, वेदांत समुनि भी कर सकता है। तो अहंग उपासना करने के लिए ये अंत में आया, सर्वम अस्मि इति उपासित तद्व्रतम तद्व्रतम, उसका ये व्रत हो गया, अहम अस्मि सर्वम अस्मि, सर्वात्मक मैं हूं, इसे चिंतन करें। फिर शाम उपासना कह करके वो गान विशेष आदि उपासना करने के लिए अभी फिर उद्गाता ऐसे उपासना करे, अलग अलग उपासना कहते, शाम के अलग अलग शब्द है, ऐसे उपासना करे। विनर्दि सामन वृणे वसव्यमित अग्निरुद्गीथो अनिरुक्त प्रजापते निरुक्त सोमस्य मृदुसक्षण वायो श्लक्षण बलवदेन्द्रस्य क्रौंचं बृहस्पतेर अपध्वान्त वरुणस्य तान सर्वानेव उपसेवेत वारुणं तेव वर्जयेत। विनर्दि सामन वृणे, साम के विनर्दि विशेष नर्द स्वर विशेष है, वृषभ जैसे शब्द करते ऐसे शाम का है, ऐसे शब्द गान को मैं वर्ण करता हूँ। पसव्यम ये पशुओं के लिए था, इसे शाम ओ पसव्यम इति अग्निर उद्गीत, ये तो हो गया शाम का, पसव्यम अग्निर उद्गीत, अग्नि के उद्गीत है, अग्नि के है। निरुक्त प्रजापति है, प्रजापति का शाम निरुक्त है, स्पष्ट है, निरुक्त अनिरुक्त निरुक्त अनिरुक्त प्रजापति अवग्रह अनिरुक्त प्रजापति, प्रजापति का समय अनिरुक्त स्पष्ट नहीं होता है, निरुक्त नहीं, निरुक्त होता है स्पष्ट, अनिरुक्त होता है अस्पष्ट, प्रजापति के जो साम अस्पष्ट है। आगे निरुक्त सोमस्य, सोम देवता का, सोम देवता चंद्र का, उसके साम निरुक्त है। वायु का जो साम है मृदु श्लक्षणम, मृदु तो होता है कोमल, अश्लक्षण होता है मधुर, ऐसे साम है वायु देवता का। श्लक्षण बलवद इंद्रस्य, बल वाले इंद्र के जो साम है श्लक्षण मधुर है। क्रौंचम बृहस्पति, बृहस्पति देवता संबंधी जो साम है क्रौंचम, क्रौंचे के पक्षी होता है, उसके शब्द के समान, क्रौंच पक्षी के समान है। अपध्वान्तम वरुणस्य, वरुण देवता के जो साम है अपध्वान्तम, अपध्वान्त का अर्थ क्या, कांसे के बर्तन फट जाने पर उसको शब्द करो, जैसे शब्द होता है, जो बर्तन फट जाता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मालूम है, वो उसमें कली का वास होता है, बर्तन फट गया तो उसको उपयोग नहीं करते, घर में रखना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन जब फट गया उसको शब्द करो, जैसे शब्द होता है उसको कहते अपध्वान्तम, भिन्न कांसे सम। तान सर्वान उपसेवेत वारणं ते वर्जयेत, ये अलग प्रकार जो साम है सबका चिंतन करे, प्रयोग करे, किंतु एक जो वरुण का है साम अपध्वान्तम, भिन्न कांस वर्तन की फट गये पांच वर्तन का शब्द जैसे, उसको वर्जयेत, उसका वर्जन करके अन्य साम का चिंतन करे। अमृतत्वं देवेभ्य आगाया नीति आगायेत, सधाम पितृभ्य आशा मनुष्येभ्य त्रिनोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नम आत्मन आगायानीति एतानि मनसा ध्यायन अप्रमतस्तु वीत।
देवता के लिए अमृतत्व में गान करके सिद्ध करता हूँ, आगायानी साधयानी।